We serve the Lord because He called us to serve Him.
हम परमेश्वर की सेवकाई इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है.
We don't serve the Lord because there is a need.
हम इसलिए सेवकाई नहीं करते इसलिए कि एक आवश्यकता है.
The need is important.
आवश्यकता जरूरी है.
Jesus said,
यीशु ने कहा,
that we must lift up our eyes and look at the fields when they are white unto harvest.
हम अपनी आंखों को अपनी दृष्टि को उठाएं और देखें कि हमारा खेत पक चुके हैं.
But that does not necessarily mean that we are called to go into that harvest.
इसका मतलब ये नहीं कि हम सबों को परमेश्वर ने अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया है.
So even though there is a need, we go because the Lord called us.
हमारे यहाँ आवश्यकता है और प्रभु ने हमें बुलाया है इसलिए हम जाकर कार्य करते हैं.
My dear brothers and sisters, you must never forget that.
मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप इस बात को कतई न भूलें.
If you serve the Lord on the basis of need, one day you'll be frustrated.
और यदि सिर्फ इस आवश्यकता के अनुकूल आप अगर कार्य करें, एक दिन आप निराश हो जाएंगे.
If you serve the Lord because He called you, you'll never be frustrated.
और यदि परमेश्वर के सेवकाई आप इसलिए करें क्योंकि उसने आपको बुलाया है, आप कभी भी निराश न होंगे.
I have been in full-time Christian work now for more than 35 years.
करीब 35 वर्ष से मैं प्रभु के पूर्ण सेवकाई में लगा हुआ हूँ.
And I have more joy today in serving the Lord than I had when I started.
और आज मुझे उन दिनों से भी ज्यादा बढ़कर के आनंद है जब मैंने इस बात की शुरुआत की थी.
There is a lot of need, as we all know, in a country like India.
हमारे देश में हम सब जानते हैं कि आवश्यकताओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है.
God has not called me to meet all that need.
प्रभु ने मुझको इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बुलाया.
God has called me to do His will on earth as it is done in heaven.
प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया है कि जो कुछ भी उसका उद्देश्य स्वर्ग में पूरा होता है वही कार्य धरती पर भी हो.
Jesus taught us to pray that in that prayer, Thy will be done on earth as it is done in heaven.
और प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में हमें सिखाया है, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी हो.
God has millions of angels.
परमेश्वर के पास लाखों स्वर्गदूत हैं.
But He tells each angel what to do.
लेकिन वो हर एक को बताता है कि तुझे क्या करना है.
And that angel does that.
और वो स्वर्गदूत ऐसा कार्य करते हैं.
They don't go running around doing something or the other.
वो इधर उधर दौड़ करके जो कुछ वो चाहते वैसा कार्य नहीं करते.
The first thing they do is listen.
पहली बात वो करते हैं कि ध्यान से सुनते हैं.
God tells them something.
और प्रभु उनसे कुछ कहता है.
They do that.
और वो उस कार्य को करते हैं.
And they come back and wait before God.
वो वापस आकर के परमेश्वर के सम्मुख पुनः खड़े हो जाते हैं.
That is how our life must be.
और यही हमारे जीवन में भी हो.
Jesus said in John's Gospel chapter 10.
यूहन्ना रचित सुसमाचार में के 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा.
He's talking about His being the true shepherd of the sheep.
और उसने कहा एक उत्तम चरवाहे और एक भेड़ के बारे में कहा है.
And He said in verse 9, I am the door.
और नौवीं वचन में लिखा है कि द्वार मैं हूँ.
If anyone enters through me, he shall be saved.
जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा.
And he shall go in and he shall go out and find pasture.
बाहर आया जाए करेगा और चारा पाएगा.
We have to learn to go in and we have to learn to go out.
हमें भीतर आना और बाहर जाना सीखना.
The great danger is that we shall keep going out without going in.
सबसे बड़ी गलत बात यह है कि हम बाहर जाते हैं अंदर नहीं आते.
And when a Christian worker keeps going out without going in, he's going to have problems.
मसीही कर्मी बाहर तो जाते हैं लेकिन भीतर वापस नहीं आते.
What does it mean to go in and go out?
इसका मतलब क्या है भीतर आना और बाहर जाना?
We go in.
हम अंदर आते हैं.
Into the presence of the Lord.
परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं.
To build up our fellowship with Him.
उसकी संगति को तरोताजा करने के लिए.
To renew our love for Him.
अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए.
To worship Him.
उसकी आराधना करने के लिए.
To keep our conscience clear.
और अपने विवेक को शुद्ध रखने के लिए.
And then we go out.
और उसके बाद हम बाहर आते हैं.
And when we go out like that, our service is far more effective than if we only went out alone.
और जब हम इस प्रकार बाहर जाते हैं तो हमारी सेवकाई बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है.
So when we serve the Lord, all our life must be one of going in and going out.
और इसलिए जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं तो ये भीतर आना और बाहर जाना लगा रहना चाहिए.
But generally speaking, I find among many Christian workers there's very little of going in.
और मैंने अपनी अपनी सेवकाई में पाया है कि बहुत ही कम कर्मी अंदर आते हैं.
One of the main things that the Lord has called me to emphasize in my ministry is to go in.
और मुझे प्रभु ने सेवकाई में इस बात को याद दिलाया है बार-बार कि तुम भीतर आओ.
That's not the only thing to be done.
और सिर्फ यही एक ऐसा कार्य नहीं कि जो करना है.
Going out is also important.
बाहर जाना भी अनिवार्य है.
And I praise the Lord for all those in Christendom who emphasize going out.
और मैं परमेश्वर के राज्य में उन सबों के लिए धन्यवादित हूँ जो बाहर जाकर के कार्य करना चाहते हैं.
But in the body of Christ, there has to be a balance in this ministry.
लेकिन परमेश्वर के इस शरीर में एक उत्तम संतुलन आवश्यकता है.
You need to hear what it is to go in.
आपको मालूम होना चाहिए कि भीतर आने का अर्थ क्या है.
And go out.
बाहर जाना क्या है.
Then it says you will find pasture.
और उसके बाद लिखा है कि तुम्हें भोजन मिलेगा या चारा मिलेगा.
If only we could understand one thing.
यदि हम सिर्फ एक बात को अच्छी तरीके से समझ लें.
That we cannot serve the Lord with our own wisdom.
हम अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते.
If we use human wisdom to do God's work.
यदि मानवीय बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की सेवकाई में अगर हम करें.
There are a lot of things that we will do wrong.
और कई बातें हम गलत पूर्ण तरीके से करेंगे.
बिकॉज गॉड सेज माई वेज आर नॉट योर वेज.
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न है.
द लॉर्ड सेड दैट इन इसाया 55.
ऐसे ही 55 में प्रभु ने ऐसा कहा.
माई वे इज नॉट योर वे.
मेरे मार्ग तेरे मार्ग नहीं.
माई वे ऑफ वर्किंग इज नॉट योर वे ऑफ वर्किंग.
जैसा मैं चाहता हूँ वो कार्य जो है तेरे समान का कार्य नहीं है.
नाउ जस्ट थिंक इफ यू वर डूइंग गॉड्स वर्क.
आप जिस ये विचार करें कि आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं.
दैट मीन्स इफ यू हैड द पावर ऑफ गॉड टू ऑर्गेनाइज हिज वर्क ऑन अर्थ.
और यदि आप कल्पना कर लें कि आपके पास वो परमेश्वरी सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर के कार्य को धरती पर करें.
आई थिंक इफ आई हैड दैट पावर आई वुड हैव डन थिंग्स वेरी डिफरेंटली.
और मैं सोचता हूं कि अगर मेरे पास में वो सामर्थ्य होता अधिकार होता तो मैं सब कुछ भिन्न तरीके से करता.
वी वुड हैव एलिमिनेटेड ऑल द डिसीवर्स.
और मैं सब धोखा देने वालों को बराबर नाश कर देता.
प्रॉब्ली एलिमिनेटेड द डेविल.
और दुष्टता को भी निकाल देता.
एलिमिनेटेड ऑल द रॉ फॉल्स रिलीजन्स.
और जितने भी गलत जो धर्म है उनको भी निकाल देता.
एंड मेनी थिंग्स बट गॉड हैजंट डन दैट.
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कार्य नहीं किया.
God has permitted so many false religions to flourish in the world.
परमेश्वर ने इस बात की अनुमति दी कि कई गलत धर्म इस धरती पर पैदा हो जाएं.
I don't know why.
मुझे नहीं मालूम क्यों.
But it teaches me one thing that God's ways are not my ways.
लेकिन मुझको एक बात ये सिखाती है कि परमेश्वर का मार्ग हमारा मार्ग अलग अलग.
God has permitted so many false teachers to flourish in Christendom.
और मसीही राज्य में भी कई गलत शिक्षक बहुत भरमार हैं.
I would not have permitted any such people if I had God's power. I'd have finished them all off.
यदि परमेश्वर के सामर्थ्य मुझ में होती तो मैं इन सबों को बर्बाद कर देता. मैं ऐसा कभी नहीं करता.
But God has allowed so many cults and so many false teachers all to flourish.
लेकिन परमेश्वर ने इन गलत शिक्षकों को क्यों अनुमति प्रदान कर दी है.
So much of the bad name that has come to Jesus Christ in our land of India is because of people who have exploited Christianity for their own gain.
परमेश्वर के नाम की बदनामी उन लोगों से हुई है जिन्होंने अपने स्वार्थपूर्ण कार्य के लिए परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग किया.
We know the number of people in India who are making money in the name of Jesus Christ.
हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे धन कमा रहे हैं.
If I were in God's place, I would have finished them all off, but God doesn't do that.
यदि अगर मैं परमेश्वर की जगह होता तो शायद मैं उन सबों को नाश कर देता.
What does that teach me?
ये क्या सिखाता है.
It teaches me that God's way is not my way.
कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर का मार्ग मेरा मार्ग अलग अलग है.
We need to understand that in many many areas.
और इनको कई कई विभिन्न क्षेत्रों में हमें समझना आवश्यक है.
I have often wondered why God allows it to rain when we are having a meeting.
और मैंने कई बार ऐसा सोचा है कि हम इतनी खूबसूरत मीटिंग के बीच में बरसात क्यों होती है.
Why does God allow so much disturbance?
क्यों ये तकलीफें होती हैं.
Why does he allow anti-Christian forces to come and disturb Christian meetings? And God can easily stop that.
मुझे मालूम नहीं कि ऐसे सम्मेलनों में मसीही विरोधी आकर के क्यों परेशानी पैदा कर सकते हैं.
If God wants everybody in India to hear the gospel, why doesn't he make it easier for us?
और यदि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति सुसमाचार को सुने तो वो इतना आसान क्यों नहीं कर देता.
There's shortage of money, shortage of workers.
पैसों की कमी है, कर्मियों की कमी है.
So many people opposing.
अब कई लोग विरोधी हैं.
when God could do things so easily to eliminate all this opposition.
और ऐसे समय में कि जब परमेश्वर बड़े आसानी के साथ सबको बर्बाद कर सकता है.
It teaches us that God's wisdom is way beyond our wisdom.
और ये हमें इस बात को दर्शाता है, सिखाता है कि परमेश्वर की का जो बुद्धि है हमारे विचारों से कहीं परे है.
Why does he allow a little baby to grow up when God knows that this baby, when he grows up, is going to start a false religion which is going to produce millions of followers?
मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर उस बच्चे को बढ़ने की अनुमति क्यों देता है जबकि वह जानता है कि ये व्यक्ति बड़ा होकर के एक गलत धर्म को पैदा करेगा.
If I were in God's place, I'd kill that baby straight away.
और अगर मैं परमेश्वर की जगह होता तो हो सकता है मैं उस बच्चे को वहीं मार देता.
But God doesn't do it.
लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता.
I have to humble myself.
मुझे अपने आप को नम्र करना अनिवार्य था.
I have to say, Lord, my wisdom is like a little cup.
मुझे ऐसा कहना तो पड़ा कि मेरी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी है.
Your wisdom is like an ocean.
और तेरे विचार जो है, बुद्धि जो है, एक सागर समान है.
And my cup cannot understand your wisdom.
और मेरा जो छोटा सा प्याला है तेरे विचारों को समझ नहीं सकता.
That humbles us.
और ये हमें नम्र करता है.
That teaches us that in other areas, if I try to do God's work in my way, I'm not going to do it the way God wants it to be done.
और इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं अपनी बुद्धि से परमेश्वर के कार्य को करना चाहूं, असंभव है.
Why did Jesus wait 4,000 years in heaven before he came to earth?
प्रभु यीशु मसीह 4,000 वर्ष क्यों इंतजार किए धरती पर आने के पूर्व?
If I were in God's place, I'd have sent Jesus a couple of years after Adam sinned.
और मैं तो अगर मैं वहां होता तो शायद हो सकता है आदम के पाप करने के 2 साल बाद ही यीशु मसीह को धरती पर भेज देता.
Why 4,000 years? What a long way.
इतने दीर्घ वर्षों का इंतजार, 4,000 वर्षों का इंतजार करने की जरूरत क्या है?
Jesus knew the Bible at the age of 12.
यीशु मसीह 12वें साल में बाइबल को जानता था.
Why did he spend the next 18 years making stools and benches and working in a carpentry shop instead of being a full-time worker at the age of 12?
और उसके बाद 18 साल पता नहीं क्यों और कुर्सियां और बेंचेस को बनाता रहा यहां बजाय इसके कि उसकी परमेश्वर की सेवकाई करे.
Don't you think that's a waste of time, 18 years making stools and benches and then 3 years preaching the gospel?
और क्या आप नहीं समझते कि ये समय की बर्बादी है कि 18 साल तक कुर्सी और स्टूल बनाते रहें बजाय इसके कि परमेश्वर के नाम का प्रचार करें?
It teaches me one thing.
ये मुझे एक बात को सिखाती है.
I am a man.
मैं मानव हूं.
God is God.
परमेश्वर परमेश्वर है.
And I am so small, my knowledge of God is so little.
और मेरा जो ज्ञान है बड़ा तुच्छ है, थोड़ा है.
So I need to go in before I go out.
इसलिए मुझे भीतर आना है बाहर जाने के पूर्व.
I need to go in to understand how I should serve him.
और बाहर जाने के पूर्व मुझे भीतर जाकर इस बात को जानना है कि किस प्रकार से.
And if I go in and go out in a very short time, I can do a tremendous work for God.
और यदि मैं परमेश्वर के पास भीतर जाकर बाहर आऊं तो मैं बहुत बड़ा कार्य उसके लिए कर सकता हूं.
But if I keep going out,
और यदि मैं सिर्फ बाहर ही जाता रहूं,
and think, yeah, there's a need here, and I've got the ability, and I know the scriptures, and I know the gospel, and I'm going to go and give it out one way or the other.
और मैं ये जानूं कि मेरे को वचन का ज्ञान है, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास योग्यता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता.
I may discover in the final day that I was very sincere, but I didn't do what God wanted me to do.
और अंत में शायद इस बात को भी आप जानेंगे कि मैं बड़ा निष्कलंग था, लेकिन जो परमेश्वर मुझसे चाहता था वो नहीं कर पाया.
The Bible says that we are members of the body of Christ.
परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक शरीर के अंग हैं.
And every part of this body has got a function.
और शरीर के हर एक भाग का एक कार्य है.
There may be some parts of the body which doctors have not discovered the function, but there is a function.
और हो सकता है कुछ ऐसे शरीर के भाग हो जो आज तक जो विज्ञान ने और डॉक्टरों ने अभी तक पहचाना ना हो, लेकिन उसका कार्य है.
I believe that when God made this human body,
मैं ये विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर इस शरीर की रचना करता है,
he first made Adam. Adam's body was just like ours.
जब उसने आदम को बनाया तो हमारे ही समान था.
He did not put one spare part in it which is unnecessary.
अनावश्यक रूप से एक भी भाग की रचना उसने परमेश्वर ने नहीं की.
Not one.
एक भी नहीं.
Every single, even small nail has got a function.
यहां तक कि एक छोटे से नाखून की भी अपनी आवश्यकता है.
एंड वेन द होली स्पिरिट कॉल्स द चर्च द बॉडी ऑफ क्राइस्ट it must be the same.
और जब परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को शरीर के रूप में प्रदर्शित करती है ऐसा ही होना चाहिए.
That there is not a single member of that body that doesn't have a specific function.
और इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर के शरीर के जो कलीसिया के प्रत्येक भाग का एक एक कार्य है.
The functions are all different.
हो सकता है कार्य भिन्न हो.
But there's no part without a function.
लेकिन कोई भी कार्य बिना कार्य के नहीं है.
First of all, you must be convinced about that yourself.
कम से कम आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लें.
You know, we can look at some brother who's got a very outstanding ministry and say, well, if I had a gift like that, I would be able to do something for the Lord.
कई बार कई अच्छे शिक्षकों कई अच्छे परमेश्वर के दासों को देखकर आप ये मान कह रहे हैं हो सकता है अगर ऐसा मैं होता तो मैं कुछ और कर सकता था.
Jesus spoke about somebody who had 5 talents, another person who had only 1.
पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि एक व्यक्ति के पास 5 थोड़े थे और एक के पास सिर्फ एक.
The person who had 1 was so discouraged that he had only 1 compared to the other person who had 5.
और एक व्यक्ति जो जिसके पास सिर्फ एक था वो तो बड़ा निराश हो गया जब उसने अपने आप की तुलना उस 5 वाले व्यक्ति से की.
And that can happen to us also.
और ये हमारे साथ भी संभव है.
Maybe you don't have such an outstanding gift as some other brother or sister has.
और आपके पास में ऐसा कोई प्रभावशाली कोई एक गिफ्ट ना हो शायद.
And then you can feel that your contribution to the body of Christ is not very important.
और तब आपको ये जब आप ये सोचने लगे कि मेरा जो योगदान परमेश्वर की कलीसिया के लिए है बड़ा तुच्छ है.
The body of Christ suffers because a lot of brothers and sisters with 1 talent don't use it.
और परमेश्वर के जो कलीसिया है उन लोगों के कारण से परेशान है जो सिर्फ एक एक तोड़े रखती हैं.
One of the first things you must be absolutely convinced about is that God has got a specific work for you in His body which nobody else can do.
आप इस बात को पूर्णतः जान लें और पहचान लें कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य अलग अलग है और परमेश्वर के लिए अनिवार्य भी है.
And that task may not be what you want to do. It may be something different.
और वो लक्ष्य हो सकता है कि जैसा आप चाहते वो ना हो तो हो सकता है दूसरा कुछ हो.
But God has a specific task.
लेकिन परमेश्वर के पास में एक विशेष लक्ष्य है.
From the time you were born, even when you did not know Him, He prepared you to fulfill that task.
हो सकता है आप उसको जानने के पूर्व ही उसने आपको पहचान लिया और आपको उसने तैयार किया.
The many things that you went through in your life was to prepare you for your unique contribution to the body of Christ.
और परमेश्वर के राज्य के लिए एक अद्वितीय कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको कुछ अनुभवों से होकर गुजरने दिया.
And even your mental makeup and everything was to prepare you for that particular contribution to Christ's body.
और परमेश्वर के कार्य के लिए ही हो सकता है आपके मानसिक संतुलन को और भी उसने कठोर किया हो.
He gave you certain natural qualities, certain spiritual gifts, because there was a particular job He wants you to do in His body.
और हो सकता है कुछ शारीरिक भौतिक या आत्मिक वरदान उसने दिए कि आप कोई विशेष कार्य परमेश्वर के कलीसिया के लिए करें.
It's when you're gripped by this truth that you have a sense of value in the body of Christ.
और जब अब अपने आप को इन विचारों से पूर्णतः जकड़ लें तो अब आप इसको समझने लगेंगे.
Not only you have a sense of value in the body of Christ.
सिर्फ यही नहीं कि आपका परमेश्वर के राज्य में एक मूल्य है.
Once you are gripped by this, you will never again be jealous of somebody else who has another gift.
और जब आप इस बात को जान लें तो आप अपने मूल्य को समझेंगे और आप दूसरे के प्रति कभी भी जलन नहीं होंगे.
Do you envy somebody else who has some other gift or ability that you don't have?
क्या आप उन लोगों से द्वेष रखते हैं? हो सकता है आपका वरदान उसका वरदानों से अलग है.
Envy and jealousy comes because we have not understood what I've been trying to say.
और इससे द्वेष और जलन ऐसे अलग हैं. हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ आप समझ ना पाए.
There is no need for Paul to envy Peter.
Paul और पत्रस के बीच में द्वेष की भावना की जरूरत
नहीं. नीड फॉर टिमोथी टू एनवी पॉल.
या तिमोथी और पॉलस के बीच में भी
द्वेष की जरूरत नहीं. नीड फॉर अ यंग ब्रदर इन द चर्च इन एफेसस टू एनवी पॉल.
और एफेसस के कलीसिया में एक नया सदस्य है उसको भी जलन की जरूरत नहीं.
इट्स गॉड हु डिटरमिन्स What ministry each of us is to have.
कि परमेश्वर के राज्य में उसके कार्य का निर्धारण परमेश्वर स्वयं करता है.
And that's why the Bible uses the picture of a body.
और इसीलिए परमेश्वर का वचन एक शरीर को प्रदर्शित करता है.
My brothers and sisters, in the last 35 years, I have seen such a lot of jealousy in Christ's body.
पिछले 35 साल की सेवकाई में मैंने परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार की जलन और द्वेष को देखा है.
There will not even be a smell of jealousy in our life when we see our calling in the body of Christ.
हमारे जीवन में एक रत्ती भर भी द्वेष तब नहीं होगा जब हम इस बात को जान लें कि मैं भी परमेश्वर के राज्य में एक अद्वितीय व्यक्ति.
When we see that God has given us a specific calling, there will be no competition with any other ministry.
और जब मैं इस बात को जान लूं कि मेरी सेवकाई ये है तो मैं किसी से प्रतियोगिता नहीं करूंगा.
We will never be trying to show that we are doing something better than that other group or that other brother.
और मैं कभी भी इस बात को लोगों को नहीं दिखाऊंगा कि मैं उस व्यक्ति से या उस समूह से बेहतर कार्य कर रहा हूं.
When we are young,
जब हम जवान हैं,
and we have come out to serve the Lord,
जब हम परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए आते हैं,
all of us have this desire to impress people.
हमें हमारे अंदर में दृढ़ इच्छा रहती है कि हम दूसरों को प्रभावित करें.
We want to report what we have done in an impressive way.
और बड़े प्रभावशाली तरीके से हम उसको रिपोर्ट सूचना देना चाहते हैं.
And we can make our report bigger than what was actually the truth because we want to impress people.
हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं और इसलिए अपनी सूचना को बड़ा ही एक रंगीन बना देते हैं.
If we say if you write it exactly like it is, it doesn't sound very impressive.
हो सकता है कि जो कुछ भी आपने किया सिर्फ वही लिखे हैं तो शायद बड़ा प्रभावशाली ना हो.
We must make it sound a little more exciting.
और इसलिए थोड़ा और भी उत्तेजित एक रिपोर्ट मैं भेजना चाहूंगा.
All this is because we are insecure.
और ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर में असुरक्षा की भावना है.
We are not happy with God having called us to do a particular job.
हम इस बात के लिए हमें खुशी नहीं है कि परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है.
We read what somebody else has done.
हम उस बात को देखते हैं कि क्या किसी और ने किया है.
We find that what we are doing is not as impressive as that.
और हम उसके बाद अपने कार्य से उस व्यक्ति के कार्य की तुलना करते हैं.
We can give a testimony or write something to show that we're also doing something for God.
और उसके बाद हम ऐसी गवाही बनाते हैं कि और दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कार्य कर रहा हूं.
And if you go along that way after a while,
और यदि आप इस प्रकार कार्य करते रहें,
you will never be a servant of God.
आप कभी भी परमेश्वर का सेवक नहीं बन सकते.
You will gradually become a liar.
और थोड़ी कुछ समय के उपरांत आप झूठ बोलने वाले बन जाएंगे.
Even if you had an anointing, you lose it after a while.
हो सकता है आपके ऊपर अभिषेक हो लेकिन आप उसको तोड़ देंगे.
And ultimately, you will live before the face of men and not before the face of God.
और अंततः आप मनुष्यों के सामने वाले जीने वाले बनेंगे ना कि परमेश्वर के सामने.
We have to break free from this habit.
और इस आदत से हमें तोड़ करके बाहर निकलना है.
And how to break free from it?
और इसको हम कैसे तोड़ें?
By recognizing that God has given you a unique place and ministry in the body of Christ.
इस बात को जानने के साथ कि परमेश्वर ने एक विशेष एक अद्वितीय सेवकाई मुझे सौंपी है.
When you try to do something and it doesn't succeed,
और जब आप कुछ कार्य को करना चाहते हैं और सफलता नहीं मिलती,
one particular ministry which you wanted,
और कोई विशेष प्रकार की सेवकाई जो आप करना चाहते थे,
you find that God is leading you into some other ministry which you don't like,
और हो सकता है परमेश्वर कुछ और कार्य करने को कहे जो आप चाहते न हो,
are you willing to choose what God has chosen for you?
क्या आप उस बात को चुनना चाहेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है?
Many, many servants of God have had to give up their first choice in order to do what God wanted them to do.
कई बार कई परमेश्वर के दासों को अपनी इच्छा को छोड़ना था क्योंकि उनको परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना था.
Let me read a verse in John chapter 21.
आइए मुझे एक वचन पढ़ने दें. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय.
The Lord Jesus told Peter.
यीशु मसीह ने पत्रस से कहा.
Verse 18.
18वां वचन.
When you were young, you girded yourself and walked wherever you wished.
जब तुम युवा थे तब कमर बांधकर जहां चाहते जाते थे.
But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you and take you where you don't want to go.
जब तुम वृद्ध होगे तब अपने हाथ फैलाओगे और कोई दूसरा तुम्हारी कमर बांधकर जहां तुम ना चाहोगे वहां ले जाएगा.
This he said verse 19, signifying but what kind of death he would glorify God.
ऐसा उन्होंने यह सूचित करने के लिए कहा कि पतरस किस प्रकार की मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा.
As I said, God's ways are not our ways.
जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर के कार्य हमारे कार्यों से भिन्न हैं.
Why God allows some of his choice servants to die so early, I don't know.
मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर इस बात की अनुमति क्यों देता है कि कुछ जवान सेवक मृत्यु को पहले ही प्राप्त कर लें.
But it says here, by death he would glorify God.
लेकिन यहां लिखा है कि वो अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा.
We can't understand that.
हम इसको समझ नहीं पाते.
We think we can only glorify God with a life.
कई बार हम ये सोचते हैं कि अपने जीवन के द्वारा ही हम परमेश्वर की महिमा को दिखा सकते हैं.
James and Peter were put into the same jail.
याकूब यहूना और पतरस एक ही जेल में थे.
James got killed, Peter escaped.
याकूब मर गया, पतरस बच गया.
Why was that?
क्यों ऐसा क्यों हुआ?
We can't understand God's ways.
परमेश्वर के विचारों को हम समझ नहीं सकते.
The angel that came and opened the door for Peter to escape. Don't you think he could have come a few days earlier and opened the door for James to escape?
पतरस को बचाने वाले दूत ने कुछ दिनों पूर्व याकूब को क्यों नहीं बचाया?
We can't understand God's ways.
परमेश्वर के विचारों को हम समझ नहीं सकते.
And I've thought that when Peter escaped that night from that jail.
और इसलिए जब पतरस वहां से जेल से बचकर के भाग निकला.
It says he went straight to the house of Mary where they were having a prayer meeting.
और वो मेरी के घर में पहुंचा, मरियम के घर में, जहां वहां प्रार्थना सभा हो रही थी.
And he gets up and gives his testimony how this angel came and opened the door for me to come out.
और उसने जाकर वहां गवाही दी कि किस प्रकार दूत ने आकर के मुझे मेरे लिए दरवाजा खोला, मुझे बचा लिया.
And perhaps sitting in that meeting was Mrs. James, the widow of the apostle.
और हो सकता है उस प्रार्थना सभा में इस याकूब की पत्नी वहां रही.
एंड शी विल बी सिटिंग लिसनिंग टू दिस टेस्टिमनी वंडरिंग व्हाई डिडंट द एंजल ओपन द डोर फॉर माय हस्बैंड.
और वो शायद इस बात को सोच रही होंगी कि परमेश्वर के दूत ने आकर मेरे पति को क्यों नहीं बचाया, उनके लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला.
कैन यू एक्सप्लेन इट?
क्या आप बता सकते हैं?
Was it because God did not need James because there were thousands of apostles available?
क्या इसलिए कि वहां पर परमेश्वर को जेम्स याकूब की जरूरत नहीं थी या कई सेवक थे?
There were so few apostles those days.
उन दिनों तो बहुत ही कम प्रेरित थे.
There were only 11.
सिर्फ 11.
To lose one was a big loss.
और एक को खोना बहुत घाटा था.
Why didn't God send an angel and deliver James?
परमेश्वर ने एक दूत को भेज करके याकूब को क्यों नहीं छुड़ाया?
I don't know.
मुझे नहीं मालूम.
It teaches me to humble myself.
और ये मुझको सिखाती है कि मैं अपने आप को और भी दीन करूं.
Say, God, your ways are not my ways.
हे प्रभु, तेरे मार्ग मेरे मार्ग से भिन्न
हैं. Your ways are perfect.
लेकिन तेरे मार्ग बिल्कुल सिद्ध हैं.
The same thing happens today.
और यही बात आज भी है.
Some faithful servant of God has gone out with much sacrifice and served the Lord somewhere and dies as a young man.
और कई बार कई जवान सेवक निष्कपटता के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में कार्य करते हैं और अपनी जान को दे देते हैं.
God saw the whole thing.
परमेश्वर सब कुछ देखता है.
God saw the people preparing to go and kill that man.
और परमेश्वर ये भी देखता है कि लोग जा रहे हैं और उसको मार देंगे.
And he allows them to kill him.
और परमेश्वर उनकी अनुमति भी देता है कि उनको खत्म कर दें.
And some other servant of God,
एक दूसरा कोई परमेश्वर का दास,
escapes death,
बच के भाग गया.
We can't understand.
हम समझ नहीं सकते.
It's good for us to humble ourselves.
ये अच्छा हमारे लिए होगा कि हम अपने आप को नम्र करें.
Say, Lord, your ways are not my ways.
और ये कहें, हे प्रभु, तेरे मार्ग मेरे मार्ग से भिन्न है.
I don't understand many things about God's ways.
मैं परमेश्वर के कई मार्गों को नहीं समझ सकता.
His ways are perfect.
लेकिन उसके मार्ग
and
सिद्ध हैं.
When I understand that,
और जब मैं इस बात को समझ लेता हूं,
I know that I apply that to my serving him.
और मैं अपने जीवन में उसको लागू करना चाहता हूं.
I say, Lord, if I can't understand your ways in all these matters which I just mentioned,
और इन कार्यों में प्रभु अगर मैं तेरे मार्गों को नहीं पहचान सकता,
is it possible that even in your work I don't understand your ways?
प्रभु, ये क्या ये संभव है कि तेरे कार्यों में भी मैं तेरे मार्गों को नहीं पहचान सकता?
Is it possible that I am serving you?
क्या ये संभव है कि
not according to your wisdom but according to mine?
क्या ये संभव है कि मैं अपने कार्य को अपने विचारों से नहीं, तेरे विचारों से अवगत होकर तेरी सेवकाई कर रहा हूं?
That's why I need to go in.
और इसी कार्य को जानने के लिए हमें भीतर आना चाहिए.
That's why I need to know God to be able to serve him better.
और हम जब परमेश्वर को जानेंगे, हम बेहतर सेवकाई कर सकते हैं.
वंस यू नो गॉड,
जब आप एक बार परमेश्वर को जानेंगे,
आई कैन गारंटी यू विल नेवर अगेन be jealous of any other brother or preacher or minister in your for the rest of your life.
आप एक बार जब परमेश्वर को जान जाएंगे आप अपने जीवन के अंत तक कभी भी किसी भी सेवक भाई से बहन से जलन नहीं होंगे.
यू विल नेवर अगेन बी इन कॉम्पिटिशन विद एनी अदर पर्सन.
आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप प्रतियोगिता नहीं करेंगे.
यू विल नेवर अगेन वॉन्ट टू प्रे बेटर देन हिम, सिंग बेटर देन हिम, प्रीच बेटर देन हिम, डू एनीथिंग बेटर देन हिम.
और आप किसी भी दूसरे के द्वारा दूसरे से बढ़कर प्रार्थना गीत गाना प्रचार करना नहीं करेंगे.
You will be absolutely content with the gifts God has given you.
आप उन बातों से उन वरदानों से तृप्त होंगे जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है.
When I was a young Christian,
जब मैं एक जवान भाई था,
23 years old,
करीब 23 साल का मसीही जवान,
and I felt God may be calling me for His work.
मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुला रहा है.
I wanted to be an evangelist.
मैं तो इवांजेलिस्ट बनना चाहता था.
And I said, Lord, if you will take me out of my job, I'll go anywhere in this country to preach the gospel.
अब मैंने प्रभु से कहा यदि तू मुझको मेरे इस नौकरी से निकाल के बाहर कर दे मैं कहीं भी जाकर तेरे सेवकाई करूंगा.
And where I was trying my best to preach the gospel.
और मैं परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था.
But I discovered that God never gave me the gift of evangelism.
लेकिन मैंने बाद में जाना कि परमेश्वर ने इवेंजलिज्म का वरदान मुझे नहीं दिया था.
I discovered through many years he finally called me to be a teacher.
और कई वर्षों पश्चात मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे शिक्षक होने के लिए बुलाया.
The Bible says God is Christ is appointed in the church some as teachers, some as evangelists, some as apostles, some as shepherds and prophets.
परमेश्वर का वचन ये कहता है कि किसी को शिक्षक, किसी को पास्टर, किसी को प्रेरित या किसी को विभिन्न प्रकार से प्रभु ने लगाया है.
And I learned something in those years that I had to choose what God wanted me to be. Not what I wanted to be.
और उन दिनों मुझे सीखना था कि जो परमेश्वर मुझसे चाहता है मैं वह कार्य करूं, उस बात का चुनाव करूं.
And that delivered me from trying to be something which God didn't want me to be.
और इस बात ने मुझे इस बात की मुक्ति दे दी कि मैं जो परमेश्वर चाहता था कि मैं वही कार्य करूं.
It delivered me from competing with other people.
और इस बात से भी मुझे छुड़ाया गया कि मैं दूसरों से प्रतियोगिता करूं.
I want to ask all of you brothers and sisters here.
मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों.
Are you willing to be what God wants you to be?
क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है?
See, when the Lord told Peter here that you're going to go out and be killed one day.
और यहां पर जब पत्रस से प्रभु ने कहा कि तुम एक दिन जाकर के मृत्यु को प्राप्त करोगे.
It says here Peter turned around and saw John. And asked, "What about him?"
और पत्रस ने ऐसा लिखा कि मुड़कर उस शिष्य को आते हुए देखा जिसे यीशु स्नेह करते थे.
Is he going to have an easy life? And only I'm going to suffer?
क्या मेरे पास क्या कठिनाई सिर्फ मुझे ही होगी? क्या उसे कुछ नहीं होगा?
See, that's a question that can come to many of us.
और यही प्रश्न हम में से कईयों के पास भी आ सकता है.
That maybe you are serving the Lord in a very, very difficult area.
और हो सकता है कि परमेश्वर के सेवकाई में आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
Probably facing the risk of death every day.
हो सकता है हर दिन आपको मौत का सामना करना पड़े.
And here you see another brother who works in the same fellowship as you, who has a very comfortable life without risk of death any day.
और आप दूसरों के साथ ये अगर तुलना करके देखें कोई दूसरा भाई उसको मौत का सामना करना कभी नहीं पड़ेगा.
You can begin to think that you are more wholehearted than him.
और आप ये सोचने लगे कि मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूं जो आराम से रह रहा है.
That pride will destroy you.
और वो घमंड गर्व आपको बर्बाद कर देगा.
यू कैन इनवर्डली जज दैट मैन.
आप भीतर से आप उस व्यक्ति को तो न्याय कर देंगे.
बिकॉज यू से वेल ही इज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ बट यू आर रिस्किंग डेथ फॉर द
लॉर्ड. आप ये कहेंगे कि वो तो एक आरामदायक जीवन जी रहा है, मैं तो बड़े मौत का सामना कर रहा हूं.
दैट्स व्हाट वी सी हियर.
और ठीक यही बात हम यहां देखते हैं.
पीटर सेड, लॉर्ड यू टेल मी आई हैव गॉट टू डाई फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, व्हाट अबाउट हिम?
पत्रस ने प्रभु से पूछा तू तो मुझे मौत का सामना करना सिखा रहा है लेकिन इस भाई का क्या?
एंड लिसन टू द आंसर ऑफ जीसस बिकॉज दैट्स द आंसर ऑफ जीसस टू यू टू.
और ये यीशु मसीह के उस उत्तर को देखें जो आपके लिए भी है.
व्हाट इज दैट टू यू? व्हाट इज दैट मैटर टू यू? इफ आई वांट हिम टू लिव अंटिल आई रिटर्न, व्हाट इज दैट टू यू? वर्स 22.
और 22वें वचन में लिखा यीशु ने कहा यदि मेरी इच्छा हो कि वह मेरे आने तक जीवित रहे तो तुम्हें इससे क्या?
दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस.
ये तुम्हारा व्यवसाय नहीं है.
यू फॉलो मी.
तुम मेरे पीछे हो लो.
That's what the Lord says to us.
और यही बात परमेश्वर आज हमसे कहता है.
You don't have to compare your lot with somebody else's lot.
आपको अपने आप से किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है.
If Jesus has called somebody like John to have a comfortable life, he'll never be killed. And Peter, you got to be killed. Accept it.
हो सकता है यहुन्ना को एक आरामदायक जीवन के लिए प्रभु ने बुलाया हो और आपको शायद मौत के लिए इसको आप मान लें.
There's so much of tendency among Christian workers to compare themselves with other people and say, why are they having it easy and I'm not having it easy.
कई बार इस मसीही जीवन में हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं और ये पाते हैं कि मेरा जीवन उसके समान नहीं है, बेहतर है या.
That's like James's wife wondering, why did my husband get killed and here Peter, the angel came and took Peter out of prison.
और शायद यही बात याकूब की पत्नी भी सोच रही थी, क्यों मेरे पति को प्रभु ने नहीं छुड़ाया लेकिन पतरस तो जिंदा है.
Is that because Peter was more wholehearted than James?
क्या इसलिए कि पतरस अपने भाई से कहीं बेहतर था?
No,
नहीं.
It was God's will for James. His time on earth was over. Peter was still some more time.
याकूब के लिए परमेश्वर के सामने उसका समय समाप्त हो गया था, पतरस का नहीं.
We can't explain that.
हम इसको हम विस्तृत रूप से कह नहीं सकते, बता नहीं सकते.
You know, when we are, I want to apply this verse 18 here in a more spiritual way.
और मैं इस 18वें वचन को एक आत्मिक एक अर्थ देना चाहता हूँ.
When we are young spiritually,
हम जब आत्मिक रूप से बड़े जवान हैं.
It's exactly like in this verse.
ठीक हम इसी प्रकार के कार्य करते हैं.
We are full of zeal and strength.
हमारे पास में बहुत ही सामर्थ्य है और उत्साह है.
And we, like it says in verse 18, we go where we want to go.
और ऐसा लिखा है कि जहां हम चाहते थे वहां जाते थे.
We may be zealous to serve the Lord.
हमें बड़ा उत्साह है परमेश्वर का कार्य करने के लिए.
We do what we want to do. We go where we want to go.
और हम वहां हम उन जगहों में जाएंगे जहां मैं चाहता हूं.
But when you are mature,
लेकिन आप जब परिपक्व बन जाएं,
you don't go where you want to go.
आप उन जगहों में नहीं जाएंगे जहां आप चाहें.
It says somebody else will take your hand.
ऐसा लिखा है कि तुम्हारे हाथों को कोई और थामेगा.
We could apply that to the Holy Spirit.
और ये पवित्र आत्मा को हम ला सकते हैं यहां.
Like it says, taking us where we don't want to go.
हमें उन जगहों में ले जाएगा जहां हम कभी नहीं चाहते.
Have you ever experienced the Holy Spirit leading you where you don't want to go?
क्या आपने कभी कहीं इस बात का अनुभव किया है जहां आप नहीं चाहते उन जगहों में आत्मा आपको ले जाए?
That's the way of the cross.
और ये है क्रूस का मार्ग.
We know in Gethsemane that Jesus did not want to go to Calvary.
और हम ये भी जानते हैं गतसमनी के बाग में यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर नहीं जाना चाहता था.
He prayed to the Father.
उसने परमेश्वर से पिता से प्रार्थना की.
He wasn't afraid of the physical death. No.
वो भयभीत तो नहीं था.
He was not afraid of physically dying or being stripped and crucified.
वो या क्रूस पर मरने के लिए शारीरिक रूप से पीड़ित होने के लिए भयभीत नहीं था.
The thing that he dreaded was that for 3 hours I will lose my fellowship with my Father when I hang there taking the sins of the world.
और जब उस बात से घबराया हुआ था कि 3 घंटे तक मुझे जब वहां पर परमेश्वर के सानिध्य से अलग होकर के पड़ा रहना पड़ेगा.
That's what he, that was the cup which he didn't want to drink.
और वो प्याला था जो प्रवेश मसीह पीना नहीं चाहता था.
Father, you and I have had fellowship for eternity. That's been the only thing I've lived for. You mean to say I have to lose it for 3 hours?
और पूरे अनंत काल से हम दोनों एक समान एक संगति में रहते हैं लेकिन हमें अब वो संगति तोड़नी पड़ेगी.
Father said yes.
पर मेरे पिता ने कहा हाँ.
If you want to save the world, that's the only way.
यदि आप इस संसार को बचाना चाहते हैं यही एक मार्ग है.
And Jesus said yes.
और यीशु ने कहा हाँ प्रभु.
See, I see the love of God for me. I see the love of Jesus for me in Gethsemane.
और मैं परमेश्वर के उस प्रेम को गतसमय में देख सकता हूं.
That he chose to go a way he did not want to go.
और उस मार्ग को उसने चुन लिया जिस मार्ग पर वह स्वयं नहीं जाना चाहता था.
That is what Jesus said meant when he said, "You must take up the cross every day and follow me."
और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे हो लेना है.
Many things in our life, my brothers and sisters, may not work out the way we expect.
कई बार हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों ऐसा हम नहीं होने होगा जैसा हम चाहते हैं.
Something we wanted, we don't get.
हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमें मिलता नहीं.
Some protection we expect the Lord to give us,
हम चाहते हैं. हे प्रभु, हमें कुछ ऐसी सुरक्षा प्रदान कर जो हम चाहते हैं, हमें नहीं मिलता.
Somebody else escapes from jail and we don't.
कुछ लोग तो जेल से बच जाते हैं, हम नहीं बच पाते.
You'll never have a question or a complaint if you can acknowledge first of all that God's wisdom is superior to yours.
जब आप इस बात को जान लेंगे कि परमेश्वर के विचार आपके विचारों से कहीं परे हैं, तो आप कभी भी प्रश्न न पूछेंगे, न ही कभी शिकायत करेंगे.
When you are old, the Holy Spirit will lead you.
जब आप बुजुर्ग हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको ले जाएगा.
Take you where you don't want to go.
और ऐसी जगहों में ले जाएगा जहां आप नहीं चाहते.
But like Jesus went to Calvary, we go the way of the cross.
और जैसा यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर गया, हम भी उसी मार्ग को ले लेंगे.
But the strength to go that way comes by going in and talking to the Father, like Jesus talked to the Father in Gethsemane.
और वो मार्ग तभी हम चुन सकते हैं जब भीतर आके जैसे यीशु ने पिता से बातचीत की, हम भी करें.
We can say that Jesus went in Gethsemane and then he went out at Calvary.
और हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह गतसंधि में परमेश्वर के पास गया और उसके बाद बाहर कलवरी पर गया.
That's how his life was always. He was always going in and out.
और ऐसे ही उसका जीवन था, हमेशा भीतर आता था, बाहर जाता था.
Let me turn you to another verse in Matthew 28.
मैं आपको एक वचन की ओर ले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मत्ती 28.
What is the foundation for going out and making disciples of all nations?
ये परमेश्वर के वचन के अनुसार उस बात की नींव कहां है कि हम बाहर जाकर प्रचार करें.
In other words, if going out and preaching and making disciples of all nations is like the upper part of a building, what is the foundation of that building?
परमेश्वर के नाम का प्रचार करना बाहर जाकर कैसा है जैसे एक खूबसूरत भवन जो बना हुआ है, लेकिन उसकी नींव कहां है?
See this building. This is the top part.
आइए इस भवन को निहारें, ये तो ऊपरी भाग है.
Underneath is the foundation.
इसके नीचे इसकी नींव है.
So, if this is making disciples of all nations, what is the foundation?
और यदि परमेश्वर के लोगों को अगर परमेश्वर के सम्मुख लाना अगर ये भवन है, तो उसका आधार क्या है?
You know that if this foundation is not strong, this building won't stand.
और आप ये भी जानते हैं कि यदि इस भवन की नींव दृढ़ नहीं है, तो ये भवन गिर जाएगा.
On what foundation can we go to all nations and make disciples?
और किस आधार पर हम बाहर जाकर के लोगों को शिष्य बनाए?
There can be many reasons why people go out and try to make disciples of all nations.
हो सकता है कई कारण हैं जहां परमेश्वर लोग बाहर जाते हैं और लोगों को परमेश्वर का शिष्य बनाते हैं.
But Jesus gave one foundation.
परमेश्वर ने सिर्फ एक ही आधार दिया है.
He said in verse 18.
उसने 18वें वचन में ये कहा.
All authority in heaven and earth has been given to me.
स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार मुझे दिया गया है.
Therefore go.
और इसलिए जाओ.
So why should I go?
मैं क्यों जाऊं?
Because all authority in heaven and earth has been given to Jesus.
स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है.
That's the reason I go.
और सिर्फ इसीलिए मैं बाहर जाता हूं.
Now if I go without recognizing that fact.
और यदि इस सत्य को जाने बिना मैं अगर बाहर जाऊं.
If I go because somebody promised to support me.
और मैं सिर्फ इसीलिए जाऊं कि किसी ने मुझे ये वायदा दिया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा.
I have raised enough support, therefore I go and make disciples of all nations.
मैंने मेरे पास काफी धन संपत्ति है, इसलिए तुम बाहर जाके लोगों को शिष्य बनाओ.
Some people have promised to support me faithfully, therefore I go to make disciples.
कई लोगों ने बड़े विश्वास योग्यता के साथ मुझे मदद करने का वादा किया है, इसलिए मैं जाता हूं.
I'm not against that. That's good.
मैं इसका विरोधी नहीं हूं.
All I'm
अच्छा
saying is that is an insufficient foundation.
मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि असंतृप्त आधार है.
Or you can say, well, there's a great need out there, therefore I go.
और ये या तो आप ये कहें कि आवश्यकता बहुत गंभीर है, इसलिए मैं जा रहा हूं.
That's also not wrong.
वो भी गलत नहीं है.
Jesus came to earth because there was a need.
और यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि यहां पर आवश्यकता थी.
Jesus looked at that need and he came and we must look at the need and go. That's right.
और हम भी इस बात को जाने कि यहां पर आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कार्य भी करें.
But what I'm trying to say is that even though there was a need on the earth, Jesus never came except until the Father sent him.
और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसीलिए नहीं आया कि यहां पर आवश्यकता थी, वह तब तक रुका रहा जब तक परमेश्वर उसको भेजा नहीं.
There can be so many reasons.
कई कारण हो सकते हैं.
In India, we find some people have gone into Christian work because they didn't find any other job.
और हम अपने भारतवर्ष में कई लोग प्रभु की सेवा का इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास और कोई कार्य ही नहीं था.
You didn't find any other job? Okay, therefore go into make disciples of all nations.
Okay, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तो जाके लोगों को चेला बनाओ.
All these things are insufficient.
ये सारी बातें असंतप्त हैं.
Are you going to go into different parts of India and make disciples?
क्या आप भारत में जाकर के लोगों को चेला बना रहे हैं?
There may be 100 reasons for it.
उसमें शायद हो सकता 100 कारण हो.
But underneath all of that must be this foundation.
लेकिन इन सारे कारणों के नीचे आधार ये वचन होना चाहिए.
All authority in heaven and earth is given to the Lord Jesus Christ.
यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार दिया गया है.
Therefore I go.
इसलिए मैं जाता हूं.
And if he allows me to be killed like James when I'm 32 years old.
और तब यदि वो इस बात की अनुमति दे कि मैं याकूब के समान 32वें साल में मौत को प्राप्त कर लूं.
That's fine. Praise the Lord.
परमेश्वर का धन्यवाद हो उस मौत के लिए.
If he allows another man like Peter to escape.
और
यदि 32 and live till he's 67.
और एक पत्रस नाम के व्यक्ति को यदि परमेश्वर अनुमति दे कि वो 67 साल तक जिए.
Praise the Lord. That's also fine because all authority is given to Jesus.
और ये अच्छा है क्योंकि संपूर्ण अधिकार परमेश्वर मसीह के पास है.
And if he allows another man like John to live to a ripe old age of 95 and never be killed, die a normal death. Praise the Lord. That's also fine.
और एक यूहन्ना नाम के व्यक्ति के समान जो 95 साल तक जिए और एक आम मौत का सामना करे बहुत अच्छा है.
Your life must be based on the fact that my Lord has got all authority in heaven and earth.
आपका जीवन इस बात पर आधारित हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में संपूर्ण अधिकार दिया गया है.
I don't compare myself with Peter or John or X or Y or Z.
मैं किसी भी व्यक्ति से यूहन्ना पत्र से अपने जीवन की तुलना नहीं कर सकता.
I am not trying to have the ministry of Paul or Peter or A, B or C. I'm not interested.
मैं किसी भी व्यक्ति की सेवकाई से अपनी सेवकाई की तुलना भी नहीं करना चाहता, भले पौलुस हो या कोई और संत.
Given me a specific job.
परमेश्वर ने एक विशेष कार्य मुझे सौंपा है.
You know, in the Old Testament,
पुराने नियम में,
the Lord gave 10 commandments.
परमेश्वर ने 10 नियम दिए.
They were all important.
ये सब जरूरी थे.
But do you know what the last one was?
क्या आप जानते हैं कि अंतिम वाला क्या था?
That's the one which most people don't obey.
और यही एक है जो अधिकांश लोग इसको मानते नहीं.
It says you must not desire anything that belongs to your neighbor.
और आपके पड़ोसी का जो कुछ भी हो उसके लालसा न करें.
Your neighbor's wife.
पड़ोसी की पत्नी.
There, I think all of us obey that commandment. You don't desire your neighbor's wife.
हम हाँ तो इस बात का पालन करते हैं, शायद हम दूसरे की पत्नी को नहीं चाहते.
आई होप यू ओबे.
मैं आशा करता हूँ कि आप ये करते हैं.
यू डोंट डिजायर योर यू नो एवरी टाइम यू टेल योर वाइफ व्हाई डोंट यू कुक लाइक सो एंड सो, यू आर एक्चुअली डिजायरिंग योर नेबर्स वाइफ.
और जब आप अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्यों नहीं तुम फलाने की तरह बनाती हो, कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तुम उस व्यक्ति से की लालसा करता
हूं. एवरी टाइम यू टेल योर हस्बैंड व्हाई डोंट यू बाय मी अ साड़ी लाइक ही बाइज, यू आर डिजायरिंग समबडी एल्सस हस्बैंड.
और जब आप ये कहती हैं कि मुझको भी उस व्यक्ति के समान एक साड़ी खरीद के दे दो, तो आप भी दूसरे की लालसा कर रही हैं.
डोंट एवर कंपेयर योर हस्बैंड विद समबडी एल्सस हस्बैंड.
आप अपने पति की तुलना किसी और के पति से कभी
डोंट एवर कंपेयर योर वाइफ विद समबडी एल्सस वाइफ.
आप अपने पत्नी की तुलना किसी और की पत्नी से कभी न करें.
डिसोबीडियंस टू द 10th कमांडमेंट.
और ये 10वें आज्ञा को तोड़ना है.
यू शैल नॉट डिजायर योर नेबर्स हाउस.
आप पड़ोसी के घर की भी लालसा न करें.
Don't say why my house is this size and his house is that size. That is disobedience to the 10th commandment.
आप कभी ये न कहें कि मेरा घर छोटा है, दूसरे मेरे पड़ोसी का घर बड़ा क्यों है.
Don't desire your neighbor's salary.
और अपने पड़ोसी के जो तनख्वाह की भी लालसा न करें.
Why he is getting so much, why I am getting so little.
वो उनके पास में उनको इतनी तनख्वाह मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती.
Do you believe that all authority in heaven and earth belongs to your Lord?
क्या आप विश्वास करते हैं कि संपूर्ण अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास दिया गया है.
He is the one who decides who is going to be my wife, what size my house is going to be, how much my salary is going to be.
और ये उस बात पर निर्भर तक प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करता है कि मेरी तनख्वाह क्या होगी, मेरी पत्नी कौन होगा, मेरा घर कैसा होगा.
Many problems are solved when you believe that all authority in heaven and earth belongs to Jesus.
हमारी कई समस्याओं का सुलझ जाएंगे जब हम इस बात को जानेंगे कि संपूर्ण अधिकार परमेश्वर
complaint and criticism and jealousy comes because we don't have that foundation.
सारी आलोचनाओं और द्वेष का सामना समझ खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये आधार।
इन द सेम वे वी कुड एक्सपैंड द 10th कमांडमेंट टू से डोंट डिजायर योर नेबर्स मिनिस्ट्री।
और ठीक इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी व्यक्ति की सेवकाई की लालसा भी न करें।
यू नो एज आई सेड व्हेन वी आर यंग वी एडमायर समबडी एंड वी वांट टू हैव अ मिनिस्ट्री लाइक दैट।
और हम जब जवान हैं तो हम दूसरे को देखते हैं आदर्श बना करके, उसी प्रकार होना चाहते हैं।
बट If you desire that, you will frustrate God's plan for your life.
और अभी यदि आप ऐसी लालसा करें तो परमेश्वर के लिए आप उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे और निराश हो जाएंगे।
Don't think that just because you can't bring many souls to the Lord where you are that your ministry is a failure.
और आप इस बात को भी ना सोचें कि यदि आपने कई लोगों को प्रभु के कदमों पर नहीं लाया तो आपका जीवन निरर्थक है, बेकार है।
I have seen in India that some parts are just more difficult than other parts.
और मैं ये जानता हूं कि भारत में कुछ भाग बड़े कठिन हैं, कुछ भाग थोड़े कम कठिन हैं।
You know that it's much easier to work in Tamil Nadu and Andhra Pradesh and Kerala than it is to work in North India?
क्या आप नहीं जानते कि इस दक्षिण भारत में प्रभु की सेवकाई करना आसान है बजाय कि उत्तर भारत के?
You can work the same number of years in Tamil Nadu and the same number of years in Himachal Pradesh and the results will be different in terms of numbers.
आप हिमाचल प्रदेश में और तमिलनाडु में अलग अलग अगर सेवकाई करें तो हो सकता है ठीक सेम एक ही वर्ष में हो सकता है आपका जो परिणाम है अलग अलग हो।
What does that mean? Does that mean that that man who is working in Himachal Pradesh, his ministry is a failure?
क्या आप समझते हैं कि हिमाचल में काम करने वाला व्यक्ति एक पराजित है? नहीं।
We cannot evaluate in terms of numbers.
हम इस प्रकार किसी को मूल्य नहीं कर सकते।
Human beings are impressed by numbers.
हम जो मानव हैं हम लोगों को नंबर से प्रभावित कर सकते
हैं। This man worked and brought 500 people to the Lord.
ये व्यक्ति आया और 500 को लेकर के आया।
In one year.
सिर्फ एक साल में।
And Noah worked for 120 years and he didn't even bring one person to the Lord outside his family.
नोहा 120 साल तक कार्य किया और अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं बचा पाया।
You think Noah was unfaithful?
क्या आप समझते हैं कि नोहा अविश्वास योग्य था?
It's because of his faithfulness that all of us are alive today.
उसकी विश्वास योग्यता के कारण ही हम और आप जिंदा हैं।
Do you know that you are not only a child of Adam, but you are also a child of Noah? Did you know that?
क्या आप इस बात को जानते हैं कि आदम की नहीं नूह की भी संतान हैं आप?
The entire human race today has come through Noah.
और जो नूह से ही आज सारे संसार की जो मानव जाति पैदा हुई।
Every human being on earth is a descendant of Noah.
और हमारे जो सारे संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति का पूर्वज जो है नूह ही है।
A lot of Adam's descendants got wiped out in Noah's time.
नूह के समय में कई आदम के लोग मर गए।
Thank God there was one man who was faithful at that time.
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय कम से कम एक व्यक्ति विश्वास योग्य था।
But the results of his ministry were not very successful. Not very impressive.
लेकिन हो सकता है कि उस समय उसकी जो सेवकाई का जो प्रभाव बड़ा तुच्छ रहा।
So we don't compare ourselves with others.
और इसलिए हम एक दूसरे से तुलना नहीं करते।
We go out.
हम बाहर जाते हैं।
We serve the Lord.
परमेश्वर की सेवकाई करते हैं।
Noah went out and served the Lord.
नूह बाहर गया, सेवकाई किया।
Nobody was saved.
कोई बचा नहीं।
The next day nobody was saved.
दूसरे दिन भी कोई
the
नहीं
next
बचा।
Next year nobody was saved.
अगले साल भी कोई नहीं बचा।
But every day he went out and preached.
लेकिन हर दिन बाहर जाके उसने प्रचार किया।
120 years.
करीब 120 साल तक।
I don't know how many of us would have managed that to keep on preaching every day for 120 years without seeing a single soul saved.
मुझे मालूम नहीं कि हम में से कितने लोग 120 साल तक बिना किसी आत्मा को बचाए प्रचार करते रहेंगे।
Come back home.
आप घर वापस आए।
And his family is there.
आपका परिवार है।
Only 8 people there.
सिर्फ 8 व्यक्ति हैं।
They asked dad, anybody saved today?
हे पिता, क्या कोई बचा आज?
No.
नहीं।
Dad, what's the reason? 100 years we've been preaching, not a single soul saved.
सैकड़ों वर्ष तक प्रचार करने के बावजूद एक भी आत्मा को नहीं बचाया।
Well, the world is wicked. What to do?
क्यों करें? संसार दुष्ट है। हम क्या करें?
But Noah didn't give up.
नूह छोड़ा नहीं।
He was a faithful man.
हार नहीं माना, विश्वास योग्य था।
Jesus said the last days will be like the days of Noah.
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन नूह के दिन के समान।
That means the world will be wicked like Noah's time, and there will also be a few people like Noah on the earth at that time.
और इसका मतलब यह है कि नूह के समान कुछ लोग होंगे जो विश्वास योग्य हैं और दूसरे सब दुष्टता से भरे हुए होंगे।
You decide to be a man like that.
और आपको निर्णय करना है कि आप किस प्रकार।
You don't have to compare your lot with anybody else's.
आपको अपने आप से किसी और की तुलना करने की आवश्यकता नहीं।
Go out.
बाहर जाओ।
and then you come in to the Lord's presence.
और उसके बाद परमेश्वर के सानिध्य में वापस आए.
And say, Lord, have I done it right?
हे प्रभु, मैंने जो कुछ किया है.
Have I lowered your standards in my preaching?
प्रभु, मैंने उन सारे बातों को प्रचार किया है जो तू चाहता था.
The Bible says Noah was a preacher of righteousness.
और परमेश्वर वचन कहता है कि नूह तो धार्मिकता का प्रचारक था.
If he had lowered that standard of righteousness, he could have got some people into his church.
हो सकता है उस धार्मिकता के उस स्तर से अगर कम करता तो कई लोग बचा भी लेता.
See the great temptation when we go out and go out and go out and we find people are not coming to be saved.
और हमारे पास में प्रलोभन इस बात का रहता है कि हम बाहर जाते हैं और कभी किसी को बचा नहीं पाते.
To try and make the narrow gate a little wider so we can get somebody in.
और इसलिए हम उस संकीर्ण मार्ग को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं कि कोई आ जाए.
And that's happened all over Christendom.
और इस ये कार्य जो है सारे मसीह समाज में हो रहा है.
People who preach the narrow gate.
और जो लोग संकीर्ण मार्ग का प्रचार कर रहे हैं.
Come through the needle's eye in order to enter God's kingdom.
परमेश्वर के राज्य में उस सुई के नोक से उच्छेद से होकर प्रवेश करना है.
Needle's eye.
उस सुई की छेद के समान.
And we preach that needle's eye and the needle's eye and the needle's eye and people say it's too small, we don't want to come through that.
और कई बार जब हम इस बात का प्रचार करते हैं लोग ये समझते हैं कि तो बहुत ही छोटा है, हम नहीं आएंगे.
And after 1 year, 2 years, nobody wants to come through the needle's eye.
और उस छेद से कोई अंदर आना नहीं चाहता करीब एक या दो साल के प्रचार के बाद.
And we say, let's try and make this needle's eye a little bigger.
और उसके बाद हम सोचते हैं कि उस संकीर्ण मार्ग को थोड़ा और फैला दें.
Then we can get somebody in.
और इसके कारण हम कुछ लोगों को तो मिल जाएं.
So we lower the standards.
और इसलिए हम अपने स्तर को कम कर देते हैं.
We don't preach the conditions of discipleship like Jesus did.
और यीशु मसीह के समान हम अपने शिष्यों की बातों को कहते नहीं.
And we make that needle's eye so big.
और उस सुई के छेद को हम निरंतर बड़ा करते जाते हैं.
People can come in now.
और लोग अंदर आ जाते हैं.
What type of people?
किस प्रकार के लोग?
People who will cause you headaches and problems for the rest of your life in your church.
आपके जीवन भर में आपके लिए सिर दर्द पैदा करने वाले विश्वासी आप प्राप्त कर लेंगे.
But how did they come in?
लेकिन वो आते कैसे हैं?
Because you were tired of preaching this needle's eye so small.
क्योंकि आप इस सुई के छेद के बारे में प्रचार करते करते थक गए.
Other people around you were making the needle's eye bigger and getting a lot of people in and their reports were more impressive than yours.
आपके चारों ओर रहने वाले लोगों ने सुई के छेद को बड़ा कर दिया, कई लोगों को प्राप्त कर लिया और उनका रिपोर्ट जो है बड़ा प्रभावशाली है.
You got tired of being the only one who is not having any results in your ministry like Noah.
आप इस बात को सोचते थक गए कि नूह के समान आपके पास भी कोई भी परिणाम नहीं मिला.
You finally gave up the battle and you decided to increase the needle's eye yourself also.
और अंत में आपने हिम्मत छोड़ दी और आपने अपने सुई की छेद को बड़ा कर दिया.
That's happening.
और यही हो रहा है.
But if you keep going in and out, you'll never do that.
लेकिन यदि आप परमेश्वर के सानिध्य में आए और बाहर जाएं, आप ये कार्य कभी नहीं करेंगे.
If you went out one day and made the needle's eye a little big,
और यदि आप बाहर जाकर के उस छेद को बड़ा कर दें,
and you come in,
जब बाहर आए,
Holy Spirit will tell you,
तब परमेश्वर की आत्मा आपसे कहेगी,
you don't have to compromise the standards in order to get people into my kingdom.
आपको इन सारे बातों से को तुलना करके आप एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है.
Preach the word exactly as I've given it, the Lord says.
जैसा परमेश्वर कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें दिया है ठीक वही प्रचार.
Leave the results with me.
परिणामों की चिंता मत करो, उसको मुझ पर छोड़ दो.
You are not called to be successful. You are called to be faithful.
आपको सफल होने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया गया.
What you term success, what men call success, can be different in Tamil Nadu and different in Himachal Pradesh.
और हिमाचल प्रदेश या तमिल नाडु में जो सफलता की परिभाषा है वो अलग हो सकती है.
Faithfulness, that's what God looks at wherever you are.
आप जहां कहीं भी हो, विश्वास योग्यता की परिभाषा एक है.
Why is it so many Christian workers get discouraged?
क्यों कई मसीही सेवक निराश हो जाते हैं?
Because they go out and out and out and out and out. They don't go in.
वे बाहर जाते हैं और जाते हैं और जाते हैं, कभी वापस लौट करके नहीं आते.
Why is the standard of our life and our ministry remains the same throughout our walk throughout our life?
हमारे बसी ही जीवन में ये जो स्तर है वो क्यों एक समान रह जाता है?
You know, when children go to school every year, we expect them to reach a higher class and a higher class and a higher class every year.
क्यों आप जानते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो प्रति वर्ष उनका स्तर बढ़ते जाता है?
Why is it our love for the Lord is not going more higher and higher?
हमारे लिए हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वह निरंतर वृद्धि क्यों नहीं कर रहा?
Why is it our humility is not getting greater that we become humbler and humbler and humbler as we go on?
हम मसीही जीवन में उस नम्रता को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं?
Why is it purity is not getting greater?
हमारा जो सिद्धि है, हमारी जो शुद्धि है, हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं?
It's because we don't go in.
क्योंकि हम अंदर नहीं जाते.
We go out.
हम बाहर जाते हैं.
We don't come in.
हम अंदर नहीं आते.
Particularly,
विशेष
the Lord is blessing your work and your ministry is externally successful.
और बाह्य रूप से यदि आपके सेवकाई सफल है,
that means the results are impressive.
कहने का तात्पर्य यह है आपके परिणाम प्रभावशाली हैं।
Then I want to say to all such brothers and sisters, you are in greatest danger.
और मैं आप उन सारे भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पर खड़े हैं।
You can think God is happy with your life because your results are successful.
आप ये हो सकता है कि इस बात को मान लें कि परमेश्वर आपसे बहुत खुश है क्योंकि आपके परिणाम बड़े प्रभावशाली हैं।
Our life, our walk with God can be one of unfaithfulness and we can still have success in our ministry.
हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सामने अविश्वासी योग्य हो सकता है और तब भी हम हो सकता है सफल रहें।
And that comes because we don't go into the Lord's presence.
और ये तभी होता है जब हम परमेश्वर के सानिध्य में नहीं आते।
You remember the second time in Numbers chapter 20 when God told Moses to speak to the rock.
गिनती 20 में हम ये पढ़ सकते हैं जब परमेश्वर ने कहा कि तू इस चट्टान से बोल।
फर्स्ट टाइम इन एक्सोडस 17 ही टोल्ड हिम टू हिट द रॉक।
और निर्गमन में उसने कहा कि तू जाकर के चट्टान को मार।
बट इन नंबर्स 20 द सेकंड टाइम ही सेड नाउ डोंट हिट, स्पीक।
और दूसरी बार निर्गमन में गिनती में उसने कहा कि तू जाकर सिर्फ बोल, मारना नहीं।
बट ही डिड नॉट स्पीक,
उसने कहा नहीं।
He did not do God's work in God's way.
उसने परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं किया।
He did God's work in His way.
परमेश्वर के कार्य को अपनी इच्छा अनुसार किया।
He said, "Last time I hit, this time also I'll hit."
पिछले बार मैंने चट्टान पर मारा, फिर से मैं मारूंगा।
And he hit.
और उसने मारा।
Did he disobey God or obey God?
क्या उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी या तोड़ी?
He disobeyed.
उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया।
Did God bless that ministry?
क्या परमेश्वर ने उनको उसको आशीष दी सेवकाई को?
Did the water flow or not?
क्या चट्टान से पानी निकला?
Yes or no? Does God bless?
क्या परमेश्वर?
When a man disobeys His word?
क्या परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष देगा जब वह उसके आज्ञा को तोड़ेगा?
That day, 20 lakhs of people got water.
उस दिन करीब 20 लाख लोग पानी प्राप्त किए।
20 lakhs of people were blessed.
करीब 20 लाख लोग आशीष प्राप्त कर लिए।
But the man through whom they were blessed was disobedient to God.
लेकिन वह व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ने उतने लोगों को आशीष दी वह अनाज्ञाकारी था।
And God punished him.
और परमेश्वर ने उसको दंड दिया।
That teaches us that your ministry can be blessed even when you are disobedient.
और ये हमें इस बात को सिखाता है कि आप उस समय भी आपकी जो सेवकाई है प्रभावशाली होगी जब आप अनाज्ञाकारी।
Every time we go out to serve God,
आप जब भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए बाहर जाएं,
we must come back in,
हम वापस आएं,
judge ourselves,
अपने आप को न्याय
करें, in the light of God,
परमेश्वर के कुछ सामंजस्य में,
say, Lord, did I do it right?
क्या प्रभु मैंने ये सही कार्य किया?
Did I do it for your glory?
प्रभु क्या मैंने ये कार्य तेरी महिमा के लिए किया?
Did I do it in your will?
क्या प्रभु मैंने तेरी इच्छा को लेकर के किया?
Did I do it in faith in you, dependence upon you, or in
क्या प्रभु
dependence upon myself?
क्या प्रभु मैंने ये तुझ पर भरोसा कर किया है या अपने आप पर?
If we have this habit of regularly going in and out,
जब हमारी ये आदत बन जाए कि हम भीतर जाएं और बाहर आएं,
we go out, we come back in,
आज हम बाहर जाएं फिर से वापस आएं,
we can never lose our first love,
हम कभी भी अपने उस प्राथमिक प्रेम को नहीं छोड़ेंगे।
How is it that the leader in Ephesus lost his first love?
ऐसा क्यों हुआ कि एफिसस के अगुओं ने परमेश्वर के प्रति प्रेम को त्याग दिया?
The Lord had to tell him, you have left your first love, all your service for me is useless.
और परमेश्वर उनको ये कहना पड़ा, चिताना पड़ा कि तुमने अपने उस पूर्व प्रेम को छोड़ दिया है।
That's because he didn't have the habit of going in and out.
क्योंकि उनके पास ये आदत नहीं थी कि बाहर जाएं अंदर आएं।
Particularly in a country like ours,
और विशेष करके हमारे इस देश में
where the need is so great that it looks as if it'll never be met even in our lifetime.
और ऐसा भी हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता इतनी गंभीर है कि हम अपने जीवन में इसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते.
We can be always tempted to be going out.
और हमारा ये प्रलोभन हो कि हमेशा हम बाहर जाएं.
And when we see so many other people around us, Christian workers who are unfaithful,
और हम जब ये इस बात को भी देखते हैं कि हमारे चारों तरफ के जो सेवक हैं अविश्वासियों के हैं,
and so much of work is not being done because many are seeking their own,
और कई लोग अपने ही एक स्वार्थ की कार्य के लिए पीछे हो रहे हैं,
even,
तो हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा.
Even sincere servants of God can say, well, then I have to do what that person is not doing.
और तब हमें ऐसा लगता है कि मुझे भी वो भी कार्य करना है जो वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा.
I go out all the more.
और मैं बाहर और भी जाऊंगा.
And I don't go in.
और मैं अंदर नहीं आऊंगा.
And gradually over a period of time, a backsliding comes in our life.
और धीरे धीरे हम परमेश्वर के सानिध्य से पीछे हट जाते हैं.
I know it happened to me.
और मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी हुआ.
In the early years, when I was serving the Lord, I was just going out, and I found gradually a backsliding came into my life.
और मैं भी जानता हूं कि जब मैं सिर्फ बाहर ही रहा करता था और धीरे धीरे मैं परमेश्वर से दूर हो गया.
And it is when we live like that that discouragement comes.
और जब हम ऐसा जीते हैं हम निराशा हमारे जीवन में आती है.
Competition comes.
और प्रतियोगिता की भावना आती है.
We're so taken up with ministry that love for Jesus is gone.
हम सेवकाई में इतने संलग्न हो जाते हैं कि प्रभु यीशु से प्रेम को त्याग देते हैं.
Tensions come in the home between husband and wife.
हमारे पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में तनाव पैदा हो जाता है.
बिकॉज वी आर सो बिजी सर्विंग द लॉर्ड.
क्योंकि हम परमेश्वर की सेवकाई में अत्यंत व्यस्त हैं.
वी डोंट हैव टाइम टू गो इन.
हमारे पास भीतर जाने के लिए समय नहीं.
आई वॉन्ट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स.
मेरे भाइयों तथा बहनों, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं.
लर्न टू गो इन एंड आउट.
आप भीतर आना बाहर जाना सीखें. अंदर और बाहर.
You want to serve the Lord?
क्या आप सेवकाई करना चाहते हैं?
You want to build up God's flock?
क्या आप परमेश्वर के झुंड को बनाना चाहते हैं?
You want to feed his lambs and feed his sheep?
क्या आप उनके भेड़ों को चराना चाहते हैं?
You know what Jesus asked Peter?
क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से क्या मांगा?
John chapter 21.
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में.
Before the Lord gave a charge to Peter.
यीशु मसीह ने पतरस को एक बात कहने के पूर्व
He gave him a responsibility to tend the sheep.
एक उत्तरदायित्व उसके हाथ में सौंपा कि तुम जाकर के भेड़ों को चराओ.
You know, in John chapter 21 and verse 15 onwards, he asked him thrice this question.
और 21 यूहन्ना 21 के 15वें वचन से तीन बार उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा.
Do you love me?
यदि तुम मेरे से प्रेम
करते हो. You love me more than these.
क्या तुम मुझे इन सबसे अत्यधिक प्रेम करते हो?
What is the meaning of that verse 15? Do you love me more than these?
क्या तुम मुझे इन सबसे अधिक प्रेम करते हो? इसका अर्थ क्या है?
See, Peter had just come to land with such a lot of fish.
और यहां पर पतरस कई मछलियों को पकड़कर उसी समय आया है.
He'd never got so many fish in his life.
उसने कभी भी इतनी सारी मछलियां उसने कभी नहीं पकड़ी.
वी कैन से ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल मिनिस्ट्री विद वंडरफुल स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव व्हाट ही हैड डन.
और इस बात को भी हम दिखा सकते हैं, उन मछली के संख्या को दिखाकर बता सकते हैं कि इसकी सफलता है बहुत ही प्रभावशाली.
वर्स 11
ग्यारहवां वचन
153 सोल्स.
153 बड़ी बड़ी मछलियां या आत्माएं.
एंड When you come to that place where you've had a tremendously successful ministry,
और जब आप उस जगह पर आए जहां आपके पास अत्यधिक सफलता है,
you go in,
आप अंदर जाएं,
and the Lord says,
और आप प्रभु आपसे कहता है,
do you love me more than this ministry of yours?
क्या तुम मुझसे अपनी सेवकाई से अधिक प्रेम करते हो?
Do you love me more than the results of your labors?
क्या तुम अपने परिणामों से अधिक मुझसे प्रेम करते हो?
Three times, again and again and again.
बार बार करीब तीन बार प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न किया.
You want to shepherd my sheep?
क्या तुम मेरे भेड़ों को चराना चाहते हो?
You want to look after my sheep?
क्या तुम मेरे भेड़ों की रखवाली करना चाहते हो?
You must love me more than everything else, more than these, more than the results of your ministry.
इन सारी बातों से बढ़ करके, अपने परिणामों से बढ़ करके क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे?
You never asked him anything else.
उसने और भी किसी बात की आकांक्षा उससे नहीं की.
He didn't check up on Peter's doctrines.
उसने पत्रस के जो सिद्धांतों को नहीं देखा.
He wanted to check up his heart.
वो उसके दिल को देखना चाहता था.
And I want to say to you, my brothers and sisters,
मैं आज आपको मेरे भाइयों तथा बहनों आपको बताना चाहता हूँ.
Don't ever evaluate your life by how many fish you got in your boat.
आप अपने जीवन को उस स्तर पर ना रखें. आप अपनी की तुलना 153 मछलियों के या सफलता से ना करें.
Whether you got one fish or 153,
एक या 153 मछलियां.
The Lord asks you some other question. He doesn't ask how many fish did you catch.
प्रभु ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी.
He was not interested in that.
वो उस इन बातों में रुचि नहीं थी.
He said, "You love me more than all these things."
क्या उसने पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो.
I believe that's the question that the Lord is asking every one of us.
हम में से हर एक से प्रभु आज ये प्रश्न पूछ रहा है.
And if that question is answered correctly,
और यदि उस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर आपने दे दिया,
the character of our ministry will change.
हमारे सेवकाई का चरित्र बदल जाएगा.
You know, when Paul was speaking about his ministry, he put it like this in 2 Corinthians in chapter 2.
दूसरे कुरिन्थियों दूसरे अध्याय में पौलुस ने अपनी सेवकाई के बारे में ये कहा.
He said, God manifests, verse 14, God manifests the sweet aroma of the knowledge of Him in every place through us.
वह हमें मसीह की विजय यात्रा में सदा साथ रखता है और सब जगह हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध फैलाता है.
See, there is a perfume.
यहां पर एक सुगंध हम देख सकते हैं.
A perfume of Christ, it's called here.
और यहां ऐसा लिखा है कि मसीह के ज्ञान की सुगंध.
That was manifested through Paul.
और पौलुस के द्वारा ये आया प्रकट हुआ.
And that is what God desires to spread through us.
और यही कार्य हमारे द्वारा परमेश्वर फैलाना चाहता है.
Fragrance of Christ.
मसीह की सुगंध.
The Spirit of Jesus.
मसीह की आत्मा.
You meet some Christian workers, they're very successful.
आप जो सफल मसीही कार्यकर्ताओं से मिलें.
Sometimes you get close to them and you don't find the fragrance of Christ in their life.
आप यदि थोड़े अधिक समीप आए आपको ये पता चलेगा कि इनके अंदर में मसीही के ज्ञान की सुगंध नहीं है.
And then you may meet some other brothers whose ministry is perhaps not so successful in human terms.
और इन मानवीय समाज में हो सकता है किसी और व्यक्ति से मिलें जिसके पास अधिक सफलता ना हो.
But you get close to them and you taste something of the fragrance of Jesus in their life.
और तब आप उन कुछ बातों का स्वाद ग्रहण कर सकते हैं मसीह के ज्ञान की सुगंध.
When you see these two examples,
और जब आप इन दो उदाहरणों को देखते हैं,
which do you want?
आप क्या चाहते हैं?
Which are you going to choose?
आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं?
Paul chose the fragrance of Christ.
पौलुस ने चुना कि मैं मसीह के ज्ञान की सुगंध को फैलाऊं.
When people come in touch with you,
जब लोग आपके पास में आए,
even if your ministry is not so great or successful in human terms,
और इन मानवीय मूल्यों के आधार पर हो सकता है आपको अधिक सफलता भी ना मिले,
there's something of the fragrance of Christ that they must taste.
लेकिन वो मसीह के सुगंध को का स्वाद चखने वाले बन सकें.
The humility,
आपकी नम्रता,
the love,
प्रेम,
the goodness,
आपकी भलाई,
of Jesus,
यीशु मसीह की.
In all our contacts with other people,
आज जब हम दूसरों से मिलते हैं तो ये हमारे अंदर से प्रदर्शित हो.
See the woman of Samaria when she met Jesus.
जब समरिया स्त्री जब यीशु मसीह से मिली,
she found he was so different from all the other preachers.
और उसको ये पता चल गया कि ये जो प्रचारक है दूसरों से भिन्न है.
The sinful woman who anointed Jesus' feet.
ये जो पापनी स्त्री जो यीशु मसीह के चरणों पर आई.
She would never have gone anywhere near the Pharisees.
और वो किसी और फरीसी के पास नहीं गई होती.
There was something different about Jesus.
और ये यीशु मसीह में तो कुछ भिन्नता है.
There was something good about him.
यीशु मसीह में
कुछ भलाई है. Humble about him.
ये बड़ा नम्र व्यक्ति
लगता है. Condemnation.
ये मुझे
in the way he approached even sinful people.
ये मुझे दोष या दोषी नहीं ठहरा रहा मुझे.
That is the fragrance of Christ.
और ये है मसीह की सुगंध.
And I believe that's what our land needs to see.
और यही हमारी धरती आज पुकार रही है.
For long years I felt that India has not rejected Christ.
मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष ने मसीह को तिरस्कृत नहीं किया है.
India has rejected the Christ that they have seen in Christians.
भारतवर्ष ने उन्हीं का तिरस्कार किया है जो मसीही हैं.
And that is not the real Christ.
और ये एक वास्तविक मसीही नहीं.
The Christ that India has seen in Christians is not the real Christ.
जो मसीह इन आज भारतीय मसीहियों में लोगों ने देखा है वो एक वास्तविक मसीह नहीं है.
एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज दैट पिक्चर ऑफ क्राइस्ट दैट इंडिया हैज सीन.
और जो भारतवर्ष ने जो चित्र को देखा है मेरा और आपका उत्तरदायित्व है कि हम उस चित्र को ही पूर्ण परिवर्तित करें.
वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट बाय अ लॉट ऑफ एक्टिविटी.
और हम बहुत सारे कार्यों के द्वारा इस चित्र को बदल नहीं सकते.
वी आर गोइंग टू चेंज इट बाय द फ्रेग्रेंस दैट कम्स फोर्थ फ्रॉम आवर लाइफ.
हमारे जीवनों से जो सुगंध पैदा हो उससे हम लोगों को बदल सकते हैं.
बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट दैट पीपल टेस्ट व्हेन दे कम इन टच विद अस.
हमारे पास में जब लोग आए मसीह की सुगंध को जानने.
व्हेन दे टेस्ट योर ह्यूमिलिटी.
जब वे आपके नम्रता को चखें.
नॉट व्हेन दे सी योर रिजल्ट.
आपके परिणामों को नहीं.
बट व्हेन दे सी योर ब्रोकननेस.
जब आपकी दीनता को नम्रता को लोग देखें.
द क्विकनेस विथ विच यू आर रेडी टू अपोलोजाइज टू समवन.
आप नम्रता के साथ में क्षमा मांगने के जब आप तैयार रहें.
योर एटीट्यूड टू मनी.
आपका धन के संबंध में आपका स्वभाव.
योर जेन्युइन लव.
आपका सही प्रेम.
दैट is the thing that's going to make a lasting impression on people.
aur yahi logo ke upar ant tak prabhav dalega.
I want to show you a verse in Philippians in chapter 2.
main Philippians mein ke dusre adhyay se aapko kuch batana chahta hu.
Let's look at this verse in closing.
aaiye hum dekhe isko. Philippians dusra adhyay.
You know when Paul wanted to send somebody to Philippi.
aur jab Paulus kisi ko Philippians mein bhejna chahta tha.
He said, I look around at all my co-workers.
और मैं अपने सारे सहकर्मियों को देख रहा हूं.
They're all good brothers.
ये बहुत अच्छे भाई हैं.
They've all sacrificed a lot. They're all gifted.
ये बड़े ही वरदान से भरे हुए लोग हैं. इन्होंने बड़ी बलिदान भी किए हैं.
But there's only one I can select from all of them.
लेकिन इनमें से मैं सिर्फ एक का ही चुनाव करूंगा.
And that's Timothy.
वो है तिमोथी.
Why did Paul select only Timothy to send to Philippi and none of his other co-workers?
Paulus ne Timothy ka hi chunav kyon kiya ki Philippi mein jaakar ke prachar kare.
He tells us the reason in verse 19 to 21.
Aur 19 se lekar 21 mein uske apne karan ko bhi usne darsha diya.
He says in verse 21 they all seek after their own.
Aur usne 21ve vachan mein likha hai ki sab apne apne swarth ke.
They all seek their own interest, not Christ Jesus' interest.
वे अपने ही स्वार्थ में लिप्त हैं. मसीह को नहीं देखते.
पॉल्स को वर्कर्स.
पॉलुस के सहकर्मी लोग.
यू नो टू गेट ऑन टू पॉल्स टीम इटसेल्फ वाज अ ग्रेट ऑनर.
और ये तो एक बहुत बड़ी बात थी कि हम पॉलुस के उस समूह में शामिल हो जाएं.
इमेजिन इफ यू वर लिविंग इन द फर्स्ट सेंचुरी एंड पॉल सेलेक्टेड यू टू बी ऑन हिज टीम. बॉय दैट वुड हैव बीन अ ट्रेमेंडस ऑनर.
आप इस बात की कल्पना करें कि आप प्रथम शताब्दी के वाले व्यक्ति हैं और पौलुस ने आपका चुनाव इसलिए किया है कि आप उसके साथ में मिलकर कार्य करें.
सो दैट इटसेल्फ वाज अ ग्रेट थिंग टू गेट इनटू पॉल्स टीम.
और ये पौलुस के समूह में आना ही बहुत बड़ी बात थी. सो
बिकॉज वी नो दैट पॉल रिजेक्टेड सम पीपल लाइक जॉन मार्क.
और हम जानते हैं कि जॉन मार्क को उसने तिरस्कृत कर दिया था.
बट इवन इन दैट टीम.
लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के समूह में भी.
हु वर वंडरफुल ब्रदर्स.
बहुत ही अच्छे भाई थे बहन थी.
हु वर सैक्रिफाइस्ड और गिवन अप देयर जॉब्स. वर फुल टाइम वर्कर्स.
अपनी नौकरियों को छोड़ दिया. बहुत बड़ा बलिदान किया कि परमेश्वर की सेवकाई करें.
पीपल अनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट.
वरदान से भरे हुए आत्मा से भरे हुए लोग.
बट पॉल सेड देयर इज स्टिल अ डिफरेंस अमंग ऑल दीस पीपल.
लेकिन पौलुस ने कहा कि फिर भी इनमें कुछ अंतर है.
टिमोथी इज डिफरेंट.
तिमोथियस एक कुछ भिन्न है.
All these other people are wonderful brothers, but there's a seeking of their own underneath.
ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं.
They're not totally sold out for the Lord.
ये पूर्णतः प्रभु के कार्य के लिए नहीं है.
There's some little bit of seeking their own interest.
थोड़ा थोड़ा कार्य स्वार्थपूर्ण कार्य में लिप्त हैं ये लोग.
And Paul could discern that.
और पौलुस ने इस बात को पहचान लिया.
He could smell that fragrance missing.
और उसने पहचान लिया कि मसीह की सुगंध वहां नहीं है.
बट वेन इट केम टू टिमोथी.
लेकिन जबकि तिमोथी उसके पास
सो ऑब्वियस देयर वाज नॉट अ स्मेल ऑफ सीकिंग हिज ओन इंटरेस्ट इन एनीथिंग.
और यहां पर जब पौलुस तिमोथियस के पास में आया उसने जान लिया कि ये अपने स्वार्थी के लाभ के लिए नहीं है.
अर्लियर ऑन इन दैट चैप्टर इट सेज have this mind in you which was in Christ Jesus.
और उसके शुरू में उसने कहा जैसा मसीह का स्वभाव मन था वैसा तुम में हो.
Who did not seek his own interest and came to this earth.
फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद अपनी भावना को
अलग रखा.
उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति नहीं की.
If he had sought his own, he'd have stayed in heaven.
यदि अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचा होता तो वह वहीं स्वर्ग में रहता.
He did not seek his own interest.
उसने अपने ही स्वयं के बारे में नहीं सोचा.
Timothy was like that.
तिमोथियस ऐसा ही.
That's the fragrance of Christ.
और यही है मसीह की सुगंध.
That when people come in touch with us,
जब लोग हमारे पास में आए,
they sense that this brother doesn't seek anything for himself.
और लोग ये जाने कि ये जो भाई या बहन है अपने लिए कुछ भी नहीं देखता.
He's not seeking his own gain.
वह अपने स्वार्थ स्वयं लाभ के बारे में नहीं सोचता.
Or this sister.
या एक बहन भी.
Not seeking their own honor.
अपने ही इज्जत के लिए नहीं.
Not seeking to impress anybody.
और दूसरों को प्रभावित करने
के लिए. Not trying to get a name for themselves.
अपने स्वयं नाम के लिए नहीं.
Not trying to get any advancement.
और कोई अपने लिए कोई लाभ के लिए नहीं.
They are only just like Jesus came to earth to do the will of the Father. Their only aim is to do the will of God.
उनकी सिर्फ यही एक इच्छा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए वैसा हम भी.
Brothers and sisters, that is the fragrance of Christ.
मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यही है मसीह की सुगंध.
That's how Jesus lived on this earth.
ऐसा ही मसीह ने इस धरती पर जीवन जिया.
There are times we read that he didn't have enough time to eat food.
ऐसा भी लिखा है कि उसके पास ऐसा भी समय था उसके पास पूर्ण भोजन नहीं था.
But he served others.
लेकिन उसने सेवकाई
की. He never sought his own in anything.
किसी भी बात में उसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया.
Identified himself, Jesus identified himself with people so thoroughly that he called himself the Son of Man.
उसने अपने मानव के रूप को धारण यहां तक कर लिया कि अपने आप को दीन करके एक समान हो गया.
He was an ordinary man.
एक साधारण से व्यक्ति बन गया.
I remember once many years ago, there was a very well-known servant of God who came, stayed in my house.
मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, एक बहुत सुविख्यात प्रचारक जो मेरे परिवार में आया और रहा.
And he was very gripped by the message.
और उनके भाषण से हम बड़े खुश थे.
He was impressed by the message he heard in the church.
और जो वचन उन्होंने हमारे कलीसिया में सुना उससे वे बड़े प्रभावित हो गए.
This is many years ago.
बहुत वर्ष पूर्व ऐसा हुआ.
And he told me.
और उन्होंने मुझसे कहा.
He said, Brother Zach, you and your wife mingle too freely with all the people.
और मुझसे कहा कि भाई जैक, तुम आप और आपकी पत्नी आप अपने कलीसिया वालों से बहुत ही ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं.
Keep a little distance.
आप थोड़ा सा दूरी जरूर रखें.
Then only they'll respect you.
तभी वे आपकी इज्जत करेंगे.
You know, like film stars and all, they won't come into your midst. Keep a little distance.
और ये बड़े जैसे फिल्मों के स्टार रहते हैं वो आम लोगों के बीच में नहीं आते.
Like kings and queens, they'll always keep a little distance.
राजा और रानी वो कभी भी आम लोगों में मिलते नहीं.
Jesus wasn't like that.
यीशु मसीह ऐसा नहीं था.
He was made in all things like his brothers.
हर एक कार्य में अपने भाइयों के समान हो गया.
He was down at their level.
वह उनके स्तर पर आ गया.
Exactly like that.
और हमारे ही समान.
What about you?
आपका क्या है?
You keep a distance in order to get people's respect.
आप लोगों से इज्जत पाने के लिए लोगों को दूर रखना चाहते हैं?
That's the fragrance of Christ.
यही है मसीह की सुगंध.
He was made like us in all things.
वह हमारे हर एक कार्य में हमारे समान बन गया.
He mingled with us and he called himself an ordinary human being.
वह हमसे इतना मिल गया, दीन बन करके एक मानव रूप धर करके कहा, एक आम आदमी बन गया.
He who was God Almighty.
वो जो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान.
Lived on earth as an ordinary human being.
एक साधारण मानव के रूप में इस धरती पर वो जिया.
Dear brothers and sisters.
मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों.
When we mingle with other believers in our local churches,
हम अपने लोकल कलीसियों में हम अपने भाइयों बहनों से जब हम हिल मिलकर रहते हैं,
don't go into their midst as a great man of God. Go as an ordinary brother and sister.
आप उनके सम्मुख में एक महान सेवक के रूप में नहीं, एक आम सेवक के रूप में जाएं.
Don't make them feel small.
आप उनको
because you are such a great man of God.
और आप अपने आप को इतना बड़ा घोषित न करें कि आप वो आपसे दूर हो जाएं. वो छोटे बन जाए.
डू योर फेलो बिलीवर्स फील कंफर्टेबल अराउंड यू?
क्या आपके सहविश्वासी लोग आपके साथ में आने पर दूरी नहीं रखते?
और डू दे रिस्पेक्ट यू लाइक सम ऑफ दीज हीदन गॉडमैन? दे सिट एट योर फीट एंड रिस्पेक्ट यू.
क्या आपको कुछ जो अन्य जाति के जो भगवान जो अपने आप को लोग बना लेते हैं उनके चरणों पर बैठाते हैं?
That's not the fragrance of Christ.
ये मसीह की सुगंध नहीं है.
Make the life of Jesus your study.
यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन आपके जीवन में हो.
Let's ask the Holy Spirit to make us like Him.
अब पवित्र आत्मा से अनुरोध करें कि वह आपको वैसा ही बना दे.
Go in.
अंदर जाएं.
We see His glory.
उसकी महिमा को देखें.
We worship Him.
आराधना करें.
We ask the Holy Spirit to make us like Him.
और अब पवित्र आत्मा से कहें कि वह आपको उसी के समान बना दे.
In humility.
इन नम्रता में.
In love.
प्रेम में.
And then we go out.
उसके बाद हम बाहर जाएं.
Then we come back in.
और जब हम वापस आएं.
We go out.
बाहर जाएं.
We go in.
हम अंदर आएं.
And we go out.
और जब हम बाहर जाएं.
Till one day.
हम तब तक करें
जब Jesus comes again.
यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए.
And we'll go in and be forever with the Lord.
और हम भीतर जाके सदा सर्वदा के लिए उसके साथ वास करेंगे.
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.
Bow our heads before God.
आइए हम प्रार्थना करें प्रभु के सामने.
I want to invite you to respond to the word of God that you've heard this morning.
मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के जिन वचनों को आज आपने सुना है उसको आप प्रत्युत्तर करें दें.
There's any specific area in your life that God's spoken to you?
यदि कोई भी एक विशेष क्षेत्र है जहां परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है.
Respond in that area.
आप उस जगह को खोजें.
Lord, I want to set things right in that area.
और आप प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं इस क्षेत्र को सही करना चाहता हूँ.
I want to be what you want me to be on this earth.
हे प्रभु, मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ जैसा तू मुझको चाहता है, ये मुझसे चाहता है.
Thank you, Father, for your word.
हे पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद.
I pray that you'll make all of us effective servants in your vineyard.
हे प्रभु, अपने इस खेत में हम सबों को प्रभावशाली एक व्यक्ति बना दे.
Those who can bring delight and satisfaction to your heart.
जो वो व्यक्ति जो तेरे हृदय को तृप्त करने वाले बन सके.
We humbly ask in Jesus' name.
हम अनुग्रह के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं.
आमीन.
आमीन.